أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں تو آپ کو کوئی بھی ریمائنڈر نہیں دوں گی, کوئی ایڈوائس نہیں دوں گی, کوئی انسٹرکشن نہیں دوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اللہ کی کتاب کے لیے نکل کے آئے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ آپ دی بیسٹ لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو یقیناً آج آپ کا نکلنا بہت مشکل ہوا ہوگا آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ چند دن رہ گئے ہیں رمضان میں, تو بہت سارے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان ساری چیزوں میں سے نکل آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی بہتری چاہتے ہیں. اور مجھے جب بھی کبھی اپنی کوئی ذاتی مصروفیت چھوڑ کر آنا پڑے, تو میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام تو جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت, کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے. غزوہ احد میں جانے کا ذکر ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگوں کے لیے نکلے, اپنی بیویوں کو چھوڑ کے نکلتے تھے. صحابہ کرام کا ذکر ہم پڑھیں گے, قرآن میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب تبوک کے موقع پہ ان کو اتنی دور کے لیے بلایا, تو وہ اس میں بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو ہم تو اتنی مزے کی نرم نرم گاڑیوں پہ بیٹھ کر اپنی مرضی کی ہیٹ اور اے سیز کو سیٹ کرتے ہوئے آتے ہیں, تو ہمیں بھی اگر وہی اجر مل جائے ایک لمحے کے لیے سوچیں. ہم اتنے لگژریس ماحول میں پڑھیں, سیکھیں, دین کے لیے نکلیں. ابھی میں ساتھ ساتھ اپنے آن لائن ساتھیوں کو بھی رکھوں گی اپنے, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت باہر سے بھی لوگ ہیں, تو آپ سب ذہنی طور پر میرے ساتھ ہیں. کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں ہمارا رابطہ بھی کمزور ہو جائے, لیکن آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو میں آپ سب کو بھی آپ کو تو میں چند باتیں کہہ سکتی ہوں, اس لیے کہ آپ گھروں کے کمفرٹ میں سن رہے ہیں. یہاں والے ساتھی ہمارے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, دے آر دا بیسٹ گروپ وی آر ڈوئنگ ہیئر. لیکن جو ہمارے آن لائن ساتھی ہیں, ان سے بہت ہی اچھی ہوپس کے ساتھ, اور ان کو ان سے کوئی بدگمانی کیے بغیر میں چند سوال پوچھ سکتی ہوں. چلیے, آپ یہاں والے تو سن ہی رہے ہیں آف کورس, لیکن آن لائن والوں کے لیے خاص طور پہ چند سوال ہیں. اگر ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر آج نہیں تو کل سے. ہاں چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھنے سے پہلے خود اختصابی, چند سوال میں بھی اپنے آپ سے کروں گی اور آپ بھی خود سے کر سکتے ہیں. نمبر ایک, کیا میں نے اپنی نیت کو چیک کیا؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنایا؟ کیا میں نے قرآن کے علم کو عمل میں ڈھالنے کی نیت کی؟ کیا میں نے صبح اٹھ کر شاور لیا؟ کیا میں نے پراپر ناشتہ کیا اگر فاسٹنگ نہیں ہے تو, اور اگر فاسٹنگ ہے تو کیا میں نے سحری کا اہتمام کیا؟ کیا میں آج اتنی ہی خوش ہوں جتنی میں اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں کسی کالج میں جاتے ہوئے تھی؟ ہمیں سے ہر ایک سوچے, آپ نے کسی نے میڈیکل کیا ہوگا, کوئی انجینئرنگ کر کے آیا, کچھ کو ہو سکتا ہے اپنی اسکول اور کالج لائف ہی یاد آ رہی ہوگی. کیا میں آج اتنی ہی خوش ہوں؟ پھر ایک سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ کیوں آئے؟ کیا سوچ کے آئے ہیں؟ قرآن آپ کے گھروں میں شروع سے ہے, بچپن سے سنتے آئے پڑھتے آئے, اور ترجمہ اردو سے دیکھ کر پڑھنا کیا مشکل ہے؟ قاری شاکر قاسمی صاحب کی ریکارڈنگ میں سوچتی ہوں کہ سب سے پرانی ریکارڈنگ ہے جو میرے ذہن میں ہے, کہ جب کبھی ہمیں تلاوت کے ساتھ ترجمے کا شوق آتا ہے پاکستانی لوگوں کو, شاید انڈیا میں بھی چلتی ہوگی, تو ہم ان کی تلاوت ایک ایک آیت کے ساتھ سنتے تھے. دیٹس اٹ. آخر میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں کیا لینا چاہتی ہوں اس کتاب سے؟ دیکھیے, بغیر نیت کیے خود کو لا کر ادھر بٹھا دینا ایسے ہی ہے کہ بس بغیر وضو کیے نماز شروع کر دی. جب تک ہم بڑی بڑی نیتیں نہیں کریں گے نا, اللہ ہم سے بڑے بڑے کام نہیں لے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیت نہ کر کے اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں. اب نیت دل کا عمل ہے, ارادے کا نام ہے, اور ارادے کو عزم میں بدلنے کا نام ہے. تو ہم سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں گے क्या मैं जहनी, जिस्मानी, रूहानी यानी मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली रेडी हूँ अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए? बहुत बड़ी चीज आप लेने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरत अल हशर में फरमाते हैं, वलौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो इसकी खशियत और इसकी हैबत से कांपने लगता, थर्राने लगता। ये छोटी चीज नहीं है। देखिए, अगर अभी भी आपने अपने आप को नहीं सोचा था ना, तो ये मेरे चंद जुमले आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। दौरे कुरान हो या कुरान फहमी का कोई भी सफर हो, अगर इसमें हम अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये इस वक्त अल्लाह ताला का करम और उसकी इनायत है कि पूरे शहर में से आपको चुनकर अल्लाह ने यहां भेज दिया और आपकी जगह मैं लिखिए। मैं इतनी खुशकिस्मत हूं कि अल्लाह ने मुझे कुरान सीखने के लिए भेज दिया। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस बहुत दफा आपने सुनी हो गई कि मैं युरीदिल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ देते हैं। तो आप सरा लिखिए तो सही अपने पास, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए खैर का फैसला किया। कोई भी आपने अपना कैरियर बिल्ड किया होगा आज तक, कहीं भी आप गए होंगे, आप उन सारी चीजों को जहन में रखकर सोचिए कि उस सब से अहम आज मेरा यहां बैठना है। मैं अल्लाह की किताब सीखने बैठी हूं। अल्लाह कौन है? अल्लाह अल मालिक है, अल कुद्दूस है, अस्सलाम है, अर रहमान अर रहीम, अल कुद्दूस, अल वदूद, अल मोमिन, अल मोहिमिन। अल्लाह के 99 नेम्स लिख के आगे पूछिए। मैं अल मोमिन का कलाम पढ़ने जा रही हूँ, अल मोहिमिन की बात सुनने जा रही हूँ, अर रज़ाक की किताब पढ़ूंगी, अल हकीम की हिकमतें सीखूंगी, अल वदूद का प्यार देखूंगी। मुझे ये बातें करते हुए ऐसे महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला के जो 99 नेम फेमस है, हालांकि इससे बहुत ज्यादा है, 200 के करीब तो आज कुरान और सुन्नत से मिल चुके हैं, लेकिन चले हम सिर्फ 99 नेम जो बहुत फेमस है उनको फोकस करके देख लें, तो मुझे लगता है ये सारे रंग ही से कुरान में। आपको इस कुरान में अल्लाह का वजूद दिखेगा, अल्लाह। और अल्लाह कौन होता है? अल इलाह, वो जात जो हैरान करते हैं। हकीकत है कि अल्लाह सुभान व तआला वो जात है जो बंदे को हैरान कर देती है। फिर आपको इस कुरान में अर रहमान और अर रहीम का प्यार दिखेगा। ये कुरान तो रहमतों से भरा हुआ है। मेरे जहन में सूरत अल अराफ की आयत आ गई, कतब अला नफ्सिहि रहमा। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत का लफ्ज लिख लिया। हदीस में आता है कि अल्लाह ने अर्श पे ये बात लिख के रख दी कि मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी रहेगी। और आप देखिए, हम अक्सर अल्लाह के रहम में होते हैं, गजब तो उसका बहुत कम आता है, और अल्लाह ना कभी आए कि हम पे गजब आए। हम अक्सर सेहतमंद रहते हैं, बीमार तो हम बहुत कम होते हैं, कभी कभी हो तो फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला आपका शुक्र है आपने मुझे रखा। ये सारे जज्बे अभी हम सीखेंगे सूरत अल फातिहा में, हम इंजॉय करेंगे कि अल्लाह का रहम क्या। फिर आपको इस किताब को पढ़ते हुए अल वदूद की मोहब्बत दिखेगी। इतना प्यार करता है आपका रब आपसे कि आप तो उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि आपके माँ बाप को आपसे कितनी मोहब्बत है, और खासतौर पे माँ जो मोहब्बत के इजहार में बहुत ज्यादा फराख दिल होती हैं, बाप थोड़े स्टिंजी होते हैं। याद रखिए, बाप मोहब्बत बहुत करते हैं, इजहार कम करते हैं। और इसी तरह दुआ, माएँ दुआएं बहुत देती हैं और खुल के देती हैं, और माएँ रहती बाद में इसलिए हैं कि दुआएं करती रहें। अगर आज आपकी माएँ हैं तो उनकी कदर कर लें। ये दुआओं की पोटली है, ये दरवाजा जिस दिन बंद हो जाता है ना, फिर इंसान पे वो फितने टूटते हैं, फिर समझ आता है कि बहुत सारे हमारे गुनाह हमारी माओं की दुआओं की वजह से माफ कर दिए जाते थे और उस पर पकड़ नहीं होती थी। एक रिवायत भी आती है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े लाडले पैगंबर थे, हर बात कर देते थे, प्यार में ऐसे ही होता है ना, लेकिन ज़ाहिर के नबी थे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारी तरह खुल तो नहीं जाते होंगे, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अब जब आप मुझसे बात करेंगे ना तो जरा सोच के कीजिएगा। तो कहा अल्लाह ताला आपने ये बात पहले तो कभी नहीं कही। कहा इसलिए कि मूसा कल तक आपकी माँ जिंदा थी। आपकी कुछ बातें मुझे अगर अच्छी नहीं भी लगती थी तो आपकी माँ की दुआओं की वजह से मैं उसको इग्नोर कर देता था। आप आपके पास वो दुआएं नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा कर दें कि जिसके बाद फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊं। तो अपने माओ की दुआएं लें। और मैं यहां एक बात कहूं जो मेरे अपने दिल की पुकार है कि आप सब यहां किसी की दुआ से आए हैं, या आपकी माँ की दुआ होगी, या आपकी नानी ने बचपन से आपके दुआएं मांगी होंगी। अल्लाह मेरी बच्ची के बच्चों को चुन ले, अल्लाह मेरे बच्चों के बच्चों की खैर करना। और शायद मेरे इन जुमलों को आप में से वो साथी समझ सकें जो खुद इस वक्त ग्रैंड मदर हैं। नानियाँ दादियाँ जिस प्यार से लाड करती हैं, वो आज अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी समझ आ जाएगा कि आपने भी तो अपने रब के, आपने भी आपके बड़ों ने आपके लिए कई दुआएं मांगी होंगी। और आप यहाँ कैसे आ गए? हो सकता है आपकी बचपन की वो दुआ जो आप मेडिकल के पेपर के वक्त पढ़ रहे थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उस वक्त आपने सोचा था कि एटोनॉमी आ जाए और एनाटॉमी आ जाए और मुझे जोलॉजी समझ आ जाए और मुझे न्यूरो सिस्टम समझ आ जाए। आपने उस सोच से ये वजीफा किया होगा, अल्लाह ने उसको छुपा दिया, रख दिया, रख दिया। फिर हो सकता है आपके वो नंबर तो ना आए हों जो कि आपने सोचे थे, लेकिन आज अल्लाह ने वो सारी दुआएं जमा करके आपको अपनी इस किताब के लिए जमा कर दिया। तो हम अल्लाह की इस किताब को दौरे कुरान 2015 के नाम से शुरू कर रहे हैं। सुनने वाले दो किस्म के होंगे, आपने खुद को उसमें पाना है। मैं दोनों को बात करके इंशाल्लाह ये छोटी सी तमहीदी बातें इसको बिल्कुल ख़त्म ना करें, ये अंदर ही सेट में रहेंगी, क्योंकि जहाँ भी ये बातें होंगी ये सबको इनकी ज़रूरत है। तो सुनने वाले दो किस्म के होते हैं, यानी आप जिस वक्त मेरे सामने बैठे हैं माशाल्लाह, और जो ऑनलाइन के थ्रू और ओक्लाहोमा में और इसी तरह कनेटिकट में और नॉर्वे में और जहाँ जहाँ मैं जानती हूँ और जो मैं नहीं जानती, साथ ही इस वक्त ग्रुप्स में बैठ के भी सुन रहे हैं। आप में से हर जगह से सुनने वालों की दो किस्में होंगी। अब घबरा गए होंगे, पता नहीं हमारा नाम किधर आना है। नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप में से कुछ वो लोग होंगे जो पहली दफा सुन रहे हैं, जिनके लिए ये कुरान एक नई चीज है, जिनके लिए ये कुरान हकीकत में एक डिस्कवरी चैनल बनने वाला है। मैं आपका दिल अपने सामने रखूं तो मुझे अपना वो वक्त याद आता है कि जिस चीज़ ने मुझे इस किताब के करीब किया था कि आखिर क्या चीज़ है इस किताब की, आखिर क्या है इसमें, लोग क्यों इसको सुनते हैं, आखिर वही तो वजह होगी। क्या है ये, फिक्शन है? यकीनन आपके जहनों में ये सवाल होंगे। क्या ये पोइट्री है, ये प्रोज है, शायरी है, नसर है, इसमें स्टोरीज हैं, कोई फिल्म की कहानी है, क्या है, आखिर क्या है? मैं बचपन से जब इस किताब को पढ़ते थे, पढ़ते क्या थे, पढ़ाए जाते थे जबरदस्ती डंडे के जोर पे, पढ़ो मौलवी साहब आ रहे हैं, खाला जी आ रही हैं, सबक सुनाने, समझ के तो पढ़ा ही नहीं हमने, हमने तो सिर्फ नाजरा ही पढ़ा था, बचपन से हमारा कल्चर ही ये था। लेकिन जिस चीज ने मेरे दिल में इस किताब की खोज का एक कहना चाहिए एक रंग डाल दिया था, वो क्या था, आखिर इस किताब में है क्या। जैसे आप देखें ना, कोई भी किताब है, लेट्स सी ये अगर डायरी है, तो अगर इसको मैं किताब समझूं तो मैं सोचूं कि इसमें है क्या। अच्छा, बाहर से तो ये बड़ी खूबसूरत है, बड़े अच्छे अच्छे कलर्स हैं, ओके चलो मैं खोल के देखती हूँ। अच्छा अच्छा, अंदर पेज बहुत ही खूबसूरत है, पर इसमें लिखा हुआ क्या है। अब हर सफ़ा आप देखें, कभी कभी आप देखें, मैं अपना फेवरेट काम जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था और अभी तो पैशन बन गया, कि मैं कुरान को खोल कर ना ऐसी चुपके से देखती हूँ, हैंड जो छोटे बुक होते हैं ना कुरान पॉकेट साइज, ऐसे खोलती हूँ। अच्छा, अब कहाँ से खुलता है? अब आप सब सोचिए, इस वक्त जो बात मैं कह रही हूँ आपको तो बड़ी बहुत बड़ी लगेगी, नामुमकिन लगेगी, इसलिए घबराइएगा नहीं। लेकिन आज आपको ये बता दूँ, अगर सुनने वालों में से हर वो बहन, यानी अगर नहीं, सुनने वालों में से हर वो साथी जो आज पहली दफा कुरान को बाज़ाब्ता तरीके से सीखने बैठे हैं, मैं आपको मुबारक दूंगी। और मेरे असल ऑडियंस आप हैं। क्यों? पहली दफा का कुरान पहली मोहब्बत है जिसने जब कभी किसी से की है, बेखुदी। और एक इंसान को वही कहना चाहिए कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अभी तक हमने अपने रब के साथ वो मोहब्बत महसूस ही नहीं की कि जो हमारे दिल के तार अपने रब से जोड़ दे। ये आपका आज सफर शुरू हो गया। इस सफर के बिल्कुल आगाज में अभी हम शुरू करते हैं, इंशाल्लाह चंद मिनट की देर है, सूरत फातिहा के बाद आप कुछ महसूस करेंगे, कोई ना कोई तो रिश्ता बंधेगा खालिक और मखलूक का। पहली बारिश पड़ती है ना मट्टी पे, जब कभी आपने पाकिस्तान में देखा होगा तो जमीन से भीनी भीनी खुशबू आती है, मुझे बड़ी पसंद है, पता नहीं आपने कभी फील किया कि नहीं। और मुझे लगता है शायद ये हमारे मुल्क की मट्टी में आती है, कहीं और पता नहीं आती है कि नहीं। तो वो जो मट्टी की खुशबू है ना, वो सूंघने को दिल करता है। कुरान की ये बारिश अब आपके दिल की मट्टी पे पड़ने लगी है। अभी आप नहीं समझेंगे, डोंट वरी, आप बच्चे हैं, मेरी नज़र में आप न्यू बॉर्न्स हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। लेकिन जब ये पड़ेगी फुहार आपके दिल पे, तो फिर इसके बाद जो अंदर से खुशबू निकलनी है, आपका सारा सोया हुआ छुपा हुआ टैलेंट निकल आएगा बाहर। डजंट मैटर आप इस वक्त 20 साल की हैं, 15 की हैं, 25 की, या 50 या 70 या 80 के हैं, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। और इस पे मैं चैलेंज कर सकती हूँ, हालांकि मैं चैलेंज करने का मुझे हक नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पे चैलेंज भी कर सकती हूँ कि आपकी जिंदगी जितनी गुजर चुकी है, आप खुद को जितना पा चुकी हैं, आप दुनिया में क्या कुछ अचीव कर चुकी हैं अपने ख्याल में, इस सफर के बाद आपके अंदर से ऐसा टैलेंट उभरेगा और आप अक्सर अकेले में बैठ के कहेंगी, ये मैं हूं, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे अंदर इतनी खैर है। हदीस में आता है कि इंसान जो है ना, ये माइंस की तरह है, मादनियात। बाहर से तो आपको सब पत्थर ही लगते हैं, आप देखिए जिन पहाड़ों में से सोना निकलता है वो को बाहर से गोल्डन तो नहीं होते, वो बाहर से भी लग पत्थर ही के होते हैं। और जिन में से डायमंड निकलता है, क्या वो क्रिस्टल क्लियर पहाड़ होते हैं? और जिन पहाड़ों के अंदर से प्लेटिनियम और फास्फोरस और कई जगहों से, तो बाहर आप देखिए कि ऑयल भी निकलता है, सुई गैस भी निकलती, कोयला भी निकलता, बाहर से पहाड़ी की जैसे होते हैं, बल्कि बड़े खूबसूरत होते हैं। बाज दफा मेरी आंखों के सामने वो एक असली पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, जो मुझे किसी ट्रैवल के दौरान एक सिस्टर ने दिखाया था। उनके मियाँ का काम जो था वो सॉल्ट की चीज़ें बनाने का था, आपको पता आजकल बहुत फेमस है। तो उन्होंने बताया कि जब हम असल जगहों से जाकर सॉल्ट ऑर्डर करते हैं, तो पहाड़ों को खोल के ये जो हमारे रिंग्स में और गोल्ड में चीज़ें डलती हैं ना, एमराल्ड्स और रूबी और किस तरह की जो भी चीज़ें सफायर्स हैं, ये किस तरह होते हैं असल में, मैं आपको दिखाऊं, मैंने कहा दिखाएं। तो उनके घर में ना एक कोने में एक ऐसे, जहां से मैं देख रही थी तो वो बिल्कुल पहाड़ था, छोटा सा ऐसे लग रहा था किसी ने रॉक रखी हुई है, ये वो साइड है जो बाहर से हमें दिखती है। तो जब मैंने कहा दिखाएं, तो उन्होंने उसका साइड टर्न की, तो बिलीव मी कि मेरी चीखें निकलने वाली थी। बाहर ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक क्रस्ट है पहाड़ की। अब जिन्होंने देखी हुई वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पर्पल कलर का था, खालिब फायरी कहते हैं उसको, या क्या होता है, पर्पल कलर के रियल स्टोन्स जो होते हैं ना, वो ऐसे लगे थे, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन में रख लें, जैसे अनार के दाने जड़े होते हैं ना, जो मैरून है वो पर्पल थे और चमके हुए, के कहने लगी ये देखिए इस शक्ल में अंदर होता है, फिर इसको काट काट के निकालते हैं और घिसाते हैं और छोटा बड़ा कर करा के फिर उसको लेके आते हैं। तो आप भी इस वक्त ऐसे ही हैं, बज़ाहर आप पहाड़ लग सकते हैं, लोग बड़े सख्त लगते हैं। हम पढ़ेंगे सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिकुम वही अकल ही जा रहा, पहले बारे में पढ़ेंगे हम कि दिल सख्त हो जाते हैं लेकिन अंदर बहुत नरमी होती है। तो बहरहाल अंदर से खैर भी बहुत निकलती है। यहाँ एक छोटी सी बात जो मुझे अभी करनी नहीं है, लेकिन इशारा दे दूं कि हर पहाड़ के अंदर से सोना चांदी और हीरा नहीं निकलता, कुछ के अंदर से कोयला भी निकलता। ये कुरान का एक इम्तियाज है। जब दिल पर कुरान पढ़ता है तो अगर अंदर खैर होती है ना, तो वो निकलती भी है और भी सुनने को दिल करता है, जज्ब करने को भी दिल करता है, फिर दिल चाहता है कि उसकी लिए कोई कुर्बानी दूं, फिर दिल चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। लेकिन अगर अंदर कोयला है, हालांकि फायदे उसके भी हैं, या अंदर कोई और बदबूदार धात है या कोई गैस है, तो फिर छोड़ देता है बंदा। यही आज बड़ा बड़ा करके लिख ले अपने नोट्स में, आपको दी गई जिम बुक, कल मैंने थोड़ा बताया था, आज फिर मैं जिक्र कर देती हूँ। जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगेगी ना, आपने स्टडी पैक्स ले लिए होंगे, या नहीं लिए तो ब्रेक में ले लीजिएगा, डोंट नो प्रॉब्लम। उसके अंदर एक जैम बोर्ड है, आप उसमें लिखते जाएं। आज इंशाल्लाह इस साल जो हम तफसीर करेंगे, तो मैं उसमें थोड़े से जेम्स बोला करूंगी और आप उसको अपने पास लिखिया करेंगे, तो आपको बाद में वो चीज़ें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो जाएंगी, ठीक है। तो कुरान सुनते सुनते इंसान के दो रवैये सामने आते हैं, ये मैं भी सिर्फ पहली दफा सुनने वालों को कह रही हूँ, अभी दूसरी वाले बेशक चाय पानी पी लें घर में जो पी रहे हैं, वो जाके कुछ और काम कर लें, लेकिन जब कुरान सुनना शुरू करते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम कुरान सुनते हैं, तो उनके अंदर अगर खैर है ना, तो फिर उनका और सुनने को दिल करेगा, फिर कुर्बानियां कुर्बानियां नहीं लगती, ऑनर लगती हैं। वो कहते हैं दुनिया में कौन सी चीज है जो कुर्बानी दिए बगैर मिली, बच्चा भी नहीं मिलता कुर्बानी दिए बगैर, दर्द ना सहे तो माँ कैसे बने। फिर वो इंतजार करते हैं, इसके सिम्टम्स हैं, नंबर एक मजा आने लगता है, नंबर दो उसको छोड़ना इम्पॉसिबल लगता है। एक हदीस का खुलासा कि ईमान की खलावत उस शख्स ने पाली कि जिसको एक दफा ईमान पर आने के बाद उसको छोड़ना ऐसे मुश्किल लगता है कि जैसे इंसान इस्लाम से कुफर पे जा रहा है, या जलता हुआ अंगारा हाथ में रखना उसको गवारा है, लेकिन उसको अल्लाह की बात सुन के छोड़ना मुश्किल नहीं लगता, मुमकिन नहीं लगता। फिर इसी तरह एक और कैफियत आए अगर कि जब आप सुने तो उसके बाद आपका रोने को दिल करे, और आपका वो बातें किसी दोस्त से शेयर करने को दिल करे, और कुरान पढ़ते वक्त आपको ऐसे फीलिंग्स आए जैसे अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के आती हैं, और रास्ते में उसके हर्डल्स भी आनी शुरू हो जाएं, अनयूजुअल किस्म की हर्डल कल आएगी आपको, अल्लाह ना करे आए, और अगर आए तो 100 दफा आए लेकिन उसमें से निकल कर आप आके बैठ जाए। जिस बंदे में खैर होती है, जो ही वो कुरान के सफर पे चलता है, एक रोड है, तो बस उसके रास्ते में मुश्किलात आनी शुरू होती हैं, एन वक्त पे गाड़ी नहीं चलेगी। बिलीव मी, मैं अपने ऑनलाइन साथियों को बताती हूँ, और जो यहाँ थे उनको थोड़ा अंदाजा होगा, कल का जो हमारा वेलकम रमजान था, मैं कहती हूँ वो हमारी बदर थी, वल्लाही बदर थी। मैं आपको सुना देती हूँ, हर दिन वही चीजें जो परसों रात तक भी ये सेट करते कराते हर चीज करके गए थे हम लोग, यहाँ मेरा टेक्निकल ये सामान जो दिन रात 24 घंटे साथ है, ऐसे लग रहा था जिस चीज को खोलो वो चलती नहीं है, नेट नहीं चल रहा, फोन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, और जो दरवाजा खोले, और इधर इनके साथ भी यही कुछ था, तो मुझे वही समझ आ गई थी कि अल्लाह इसमें कितनी को खैर निकलनी है, इस नौरे कुरान से तूने कोई खैर लेनी है कि ये शैतान आखिरी अब इस वक्त हरबे आजमा रहा है। इसीलिए हदीस में आता है और कुरान की भी आयत है, फ़ैज़ा क़रात अल-क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह व इज़ा क़रात अल-क़ुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह, कि जब कुरान पढ़ने आओ ना तो औस बिल्ला पढ़ लो, शैतान से पनाह मांगो, और आप और मैं ये काम अपने लिए लिख लें। अगर आप ये सारी बातें सुन के घबरा रहे हैं ना कि अच्छा फिर कल क्या होने वाला है मेरे साथ, और परसों क्या होगा, और मैं पूरा नहीं कर सकूंगी ये कुरान, तो अभी से औस बिल्लाह को अपना विर्द बना लें। औस बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मालिक तू पनाह देने वाला है, तो अल मोइस भी है, कौन है फमई यजीर, है कोई जो तेरे सिवा पनाह दे, अल्लाह तो मुझे बचा ले। आप इसको यूं सोचिए कि पनाह कौन दे सकता है जिसके कब्जे में चीज होती है ना। एक उस्ताद थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि बताओ अगर एक शख्स है वो रास्ते में कहीं जा रहा था, आगे उसको एक रेवड़ दिख रहा, रेवड़ से मुराद आपके लीजिए कि जैसे शीप होती है ना, बकरियां हैं और उसका एक किस्म का काफला, उसमें शेफर्ड भी है, ठीक है, शीप है तो रेफर्ड शेफर्ड, और बकरियों की हिफाजत के लिए एक भेड़िया भी होता है। आप उस शख्स को उधर से गुजरना है, या भेड़िया नहीं तो कुत्ता कह ले, उसने कुत्ता भी रखा हुआ है जो अपनी बकरियों की हिफाजत के लिए, अब उस शख्स को वहां से गुजरना है तो वो उस कुत्ते से कैसे बचेगा। तो अब स्टूडेंट जो थे वो अपनी राय देने लग गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कहा कि मैं हाथ में डंडा रख लूंगा, किसी ने कहा कि मैं थोड़ी दूर से गुजरूंगा, तो उसने कहा देखो, उस्ताद तो उस्ताद ही था ना, उसने क्या कहा, कहने लगा कि देखो तुम ये सब कुछ ना करो, फायदा नहीं होगा, जितना तुम कुत्ते के मुंह लगोगे वो तुम्हें और घूरेगा, तुम एक काम करना, जब तुमने वहां से गुजरना ना तो वो जो रखवाला जो शेफर्ड है उसको आवाज लगा के कहना कि मुझे सर अपने कुत्ते से बचा लो, तो बस देखना जब तुम उसकी उसको कहोगे ना तो उसने अपने कुत्ते को एक इशारा करना है तो इधर कर। ये एक मिसाल है, अब इस मिसाल को भूल जाए, मैं और आप दौरे कुरान करने लगे, हम कुरान की इस दुनिया में कदम रखने लगे, जितने आप सुबह से एक्टिव थे ना, जैसे रात को आपको नींद नहीं आ रही थी ना, कितने लोग हैं जिनको खुशी से रात को नींद नहीं आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नहीं आ रही थी। और ये हमेशा होता है, एक्साइटमेंट है ना, जिस खुशी से आप जाग रहे थे और जितनी आपकी नींदें उड़ी हुई थी ना, शैतान की भी रात की नींद उड़ी हुई थी, उसके भी आज बड़े गोल थे। वो आप तो अकेले लड़ रहे थे, उसने तो आप सबको रोकना था, और वल्लाही वल्लाही आप जितने माशाल्लाह आके यहाँ बैठ गए हैं ना, इससे शायद मेरा ख्याल है कि 10 गुना लोगों को अभी तक उसने रोका होगा, और वो सारे आगे तो बैठेंगे भी कहाँ। अल्लाह के अरकाम में हिकमत है, अल्लाह नोज दी बेस्ट। लेकिन याद रखिए, शैतान को इस वक्त सबसे ज्यादा आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसको जहर लगते हैं वो लोग जो कुरान समझ के पढ़ते हैं। आप कहेंगे क्या मतलब आपका, हमको पहली दफा कुरान पढ़ने लगे? नहीं, हम हर महीने कुरान खानी करते हैं, रबीउल अव्वल में भी जमा होकर पढ़ते हैं, कोई मुश्किल आती है उस वक्त भी कुरान पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सब बातों से इत्तेफाक है। लेकिन याद रखिए, आप सादा कुरान पढ़ें, आप कुरानी साले सवाब के लिए पढ़ें, आप इस किताब को बच्चों को नाजरा के तौर पर स्काइप पे पढ़ाएं, शैतान को कुछ बुरा नहीं लगता, उसको भी पता है कि आपने कुछ तो करना है। सादा कुरान आप पढ़ते हैं, शैतान को बिल्कुल बुरे नहीं लगते, वो कहता है चलो इसको बहलाए रखो। हदीस में आता है कि कुछ लोग हैं जो कुरान को इतने मखारिज के साथ और इतनी बारीकियों से पढ़ते हैं, लेकिन कुरान उनके खलक खलक, ये जो आखिरी हिस्सा होता है ना, यहाँ इससे नीचे नहीं जाता, ये आखिरी जगह जहाँ मखरज निकलता है, यानी कुरान इससे नीचे नहीं आता। तो शैतान को क्या लगे आप अपनी मजहबी किताब पढ़ते रहे? उसका तो सबसे बड़ा गोल क्या है कि आप इस किताब को खोल कर इसे हिदायत ना लें। और जब कुरान को इल्म के लिए या जब किताब को हिदायत की किताब बनाने के लिए पढ़ा जाए तो शैतान को बुरा लगता है, बगैर सोचे समझे तो वो पढ़ाएगा। कितने हाफिज हैं दुनिया में, इतने तर्जमे के हाफिज क्यों नहीं है? जितना आज हमारे कल्चर में लोगों को अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का शौक है, उतना आमिल कुरान बनाने का शौक क्यों नहीं है? तो लिहाजा बचते हुए रहिएगा, सुबह शाम की दुआएं नहीं छोड़नी। आपको सुबह का एक दो का कार्ड इधर दिया था, पढ़ा हमने मिलके, सारी चीजें आती रहेंगी, अभी बस जहन पे बोझ ना दें, लेकिन अल्लाह से गहरा ताल्लुक रखें और तड़पें कि अल्लाह मुझे हिदायत चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर नेमत बिन मांगे मिल जाती है, दो चीजें बिन मांगे नहीं मिलती, हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत। क्योंकि खास चीजें हैं ना, आप भी तो आम चीजें सबको ही बांट देते हैं, तुम भी ले लो तुम भी ले लो, और वो एक खास चीज आपने छुपा के रखी थी, ये तो मैं ही ले लूंगी, वो खास लोगों को अल्लाह देता है। तो इसके लिए आपको तड़पना पड़ेगा। फिर अगली चीज, नए सुनने वालों के लिए, ये मुश्किल आए तो जम जाए, जब मुश्किल आए तो समझे कि आए एम ऑन द राइट पाथ। और हर रोज आप जब वक्त से पहले यहां निकल कर टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, आप समझ लेंगे शैतान उतना आपसे नाराज होगा। जब आप लेट निकलेंगे, घर से देर से आएंगे, रास्ते में स्ट्रक होंगे, पूरे दिन में शैतान आपको पीछे कर देगा, तो लिहाजा वक्त से पहले निकले। रास्ते में उम्मीद रखें कि जो आपके ख्याल रास्ता 15 मिनट का है वो 25 का होगा, ऐसी ऐसी ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी चीज आपने जो सोचनी है इस वक्त अपने लिए, कि चूंकि पहली दफा सुन रही है ना, तो आप इस वक्त अपने आप को बिल्कुल क्लास 1 2 का बेबी समझें। कुरान की हर वो बात जो मुश्किल हो, मिसाल है समझने के एतबार से, फिर दूसरी अमल के एतबार से, क्योंकि कुरान में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर कह लीजिए ऐसे भी हुक्म दिखेंगे, नए लोगों को लगते हैं, पुरानों को नहीं लगते अल्लाह के हुक्म। आपको जब कोई बात ऐसी लगे कि नो आई कैन डू दिस, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट फॉर मी, तो आप उसको ये कहकर आगे गुजर जाए, चलो अभी मुझे नहीं समझ आती, बाद में देखूंगी। जैसे एक बच्चा, जो बच्चा है वो मेडिकल की कोई बात पूछे तो आप क्या कहती हैं, बेटा आप अभी बच्चे हैं, तो बस गुजर जाए, किसी बात से अड़ना नहीं है। फिर अगली चीज आप अपने लिए लिख लें कि जो सुनेंगे उस पर अमल की आज से नियत करें। इस साल का हमारा जो दौरे कुरान है, ये उम्मत वसत के नाम है, और उम्मत वसत कौन है? आप और मैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जो इस वक्त दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती भी दिखती है, ये है वो उम्मत जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। अभी मैं डिटेल्स नहीं दूंगी, ये जगह जहां आयतें आएंगी वहां हम कुछ करने वाले हैं, इसलिए डोंट वरी। लेकिन बस इतना समझिए कि अल्लाह का एक इरादा है कि जिस तरह जन्नत ईमान वालों को मिलनी है ना, दुनिया भी ईमान वालों को मिले। लिखिए अपने पास, ग्लोब की एक तस्वीर बनाएं जरा अपने नोट्स में, ऐसे ही बना ले गोल सा दायरा। हाँ, हमारे तो लोगों में भी है, हर जगह आपको दिखेगी। अल्लाह का इरादा क्या है कि जिस तरह जन्नत ईमान वालों को मिलनी है, ये दुनिया भी ईमान वालों को मिल जाए। अब आप मुझे बताइए, बींग अ मुस्लिम और बींग अ ईमान वाला होने के आप भी यही चाहती है ना? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया के कामयाब तरीन बच्चे हों? आपका दिल चाहता है ना कि एक खबर छपे अखबार में कि एक स्पेस शटल हला में भेजी गई और नीचे नाम के साथ लफ्ज मोहम्मद हो? दिल चाहता है ना? आपका दिल चाहता है कि एक खबर आए CNN पे या BBC लंदन पे किसी पे और लिखा जाए एक बहुत बड़े चैनल का आगाज हुआ है जो दुनिया को सर्व करेगा, वेदर बताएगा, डिग दिस दिस दिस, और उसको शुरू करने वाले के नाम में अब्दुल्ला आता है? चाहते हैं? मैं तो सोच के खुश हो गई हूं। हम सोचते हैं कि दुनिया में एक लिस्ट आए 2015 के एंड पे, 16 जब शुरू हो जनवरी पे, तो वो क्या आए, हम आपको 2015 के फिगर्स बताते हैं। रिचेस्ट पर्सन मुसलमान, हैप्पीएस्ट पर्सन एक मुसलमान, और कामयाब तरीन मुसलमान, इस साल अवार्ड उसको मिला मुसलमान, कहीं प्रेसिडेंट अवार्ड मिला तो उनको मोमिन मोमिन मोमिन, और हर जगह अल्लाह के नबी की उम्मत का नाम हो। कैसा लगता है सोच के? व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, ड्रीम लैंड लग रही है। अल्लाह का भी यही ड्रीम है। ये इस साल हमने डिस्कवर करना है अपने दौरे कुरान में, हमने इस दुनिया में कामयाब होना है। भूल जाए अभी जन्नत को थोड़ी देर के लिए, कुरान आपको खुद ही याद दिलाएगा जन्नत बार बार। अल्लाह मुझसे और आपसे ये चाहता है कि वो मुस्लिम डोंट बी लेजी, उठो कुम फानजर, उठो काम करो। अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान का रहम कि उसने कुरान सिखाया। तो मुसलमानों को इस दुनिया में एक्टिवेट देखना चाहता है अल्लाह ताला, सक्सेसफुल देखना चाहता है। और वो कैसे होगा? दुनिया में काम करेंगे, इल्म हासिल करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, दुनिया को नफा देंगे। सूरत रात में आपको इसका जवाब मिलेगा, जहां जहां आते आएंगी बात करेंगे। इस साल का हमारा अंदाज कुरान के 5 हकूक का है, ये भी नोट कीजिए। पहला हक ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह है यहां लिखे मैं आप सबके सामने, अगर आप देखना चाहें तो। इस साल के दौरे कुरान में हमारा अंदाज कैसा होगा बिस्मिल्लाह, और अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाए, हम कुरान के 5 हकूक को कैसे देखेंगे। पहला हक क्या है? बिलीफ एंड ऑनर। कुरान पर ईमान भी पक्का हो, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, और इसकी ऑनर भी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, मुस्लिम्स कुरान से बहुत प्यार करते हैं। मुस्लिम कभी अपनी किताब को डिस्ग्रेस नहीं करते, पाँव में नहीं रखते, इसलिए आपने भी अपने मुसहफ ज़मीन नहीं रखने, जो आपको इतने प्यारे डेस्क मिले हैं, चेयर्स हैं, टेबल हैं, आप इन पर रखेंगे, और अगर कभी रखना भी पड़े तो नीचे कोई चीज़ रख के रखें। इस पे तो मेरा नहीं ख्याल मैं एक लफ्ज भी बोलूं, करते हैं ना मोहब्बत हमारे घरों में, तो बाज़वा कुरान इतने ऊंचे रैक पे रखा जाता है इज्जत की वजह से कि हाथ भी नहीं लगता। और बेटी की शादी पे खूबसूरत से जुजदान में उसको सजा कर गोटा किनारी लगा के, आजकल पता नहीं क्या करते हैं, मेरा ले आज तो आईफोन ही दे देते होंगे, आई कुरान ले लो बेटी, कितने मुसहफ चाहिए तुम्हें। वैसे अब दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मैं अपने ऊपर लेके सोचती हूँ, क्योंकि इतनी आदत हो गई अब फोन में पढ़ने की कि जो एक सादा अपना मुसहफ है वो मुझे तो ट्रैवलिंग की वजह से भी मुश्किल लगता है, और आप देखें कि स्क्रीन से पढ़ना आसान लगता है ना, शाइनी होता है, लेकिन बेटियों की शादी पे बड़े बड़े कुरान दिए जाते थे, और मैंने कई बेटियों को देखा है शादी के साल दो साल बाद वो ला के ना माँ को देती हैं, अम्मा ये एक साल से पढ़ा ही नहीं है तुम पढ़ लो, और ऊपर मट्टी बड़ी होती है। तो ताजीम तो ईमान करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इस सफर में इस पे बात करते रहें। फिर दूसरा आप देखिए, तिलावत और तरतील, इसको पढ़ना भी है। इस पे मुझे आप सबका तावन चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तरीकाकार क्या होगा कि हम कुछ हिस्सा कुरान का पढ़ेंगे, यहां सुनेंगे, और उसके जब यानी उसका हम तफसीर या उसका तर्जुमा कर चुके होंगे, फिर हम उसकी तिलावत सुनेंगे। सूरह फातिहा को हम डिफरेंट आवाज़ों में सुनेंगे, लेकिन बाकी में हमारा तरीक़ाकार जो गोल ये है, और अल्लाह से दुआ भी है कि मदद हो, हम वन रुख जब कर लिया करेंगे एक पारे का, फिर हम उसकी तिलावत सुनेंगे। और जब तिलावत चलेगी तो उसको हम इतना नहीं ऊंचा रखेंगे कि सारे रूम में उसके बाद हो, उसको एक बस वो एक कैटलिस्ट बनाएंगे और आप और मैं सब पढ़ेंगे साथ। यानी इस हॉल में से कुरान की गूंज की आवाजें आएंगी, जैसे कभी आपने किसी मदरसे में हाफिजों की आवाजें सुनी होंगी और हरम की आवाजें आपने सुनी होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। फिर तीसरी चीज देखिए, तजक्कुर और तदब्बुर, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये हमारा तीसरा काम होगा। इस साल की तफसीर में हम बहुत ज्यादा वाक्यात को और उसकी अंदर से साइड की चीजों को नहीं लेंगे, बल्कि मैं आपके सामने पहले तर्जमा रखूंगी, तर्जमे के साथ उसमें से तदब्बुर के नुक्ते दूंगी। ठीक है, क्योंकि मत वसत बनना कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है, तज़क्कुर और तदब्बुर क्या होता है, वो जब करेंगे तो यानी मतलब पॉन्डरिंग अपॉन दैन, ये आयत मुझसे क्या कहती, कुछ पॉइंट्स बोला करूंगी और आप जल्दी से अपने नोटबुक में लिखेंगे, आपके पास इसमें जेम बोर्ड रखा हुआ है, उसमें इंशाल्लाह तदब्बुर के दौरान जो चीज अच्छी लगी आप उस पर, चाहे आपको लग रहा है वो इतनी खूबसूरत है कि अभी ना लिखूं, अभी अपने पास नोट्स में लिख लें, घर जाके आपने आज के पारे के जेम्स अपने उस पर लिख के तो अपने घर में अपने स्टिक कर दें। आपके बच्चों के लिए आप एक काम कर सकती हैं, वो अगले मैं भी बताती हूँ आपको। बहरहाल तज़क्कुर और तदब्बुर होगा। फिर चौथा दर्जा क्या है, हुक्म और इकामत, इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस। ये कैसे, कि जो सुनूंगी उस पे अमल की पूरी कोशिश करूंगी। अभी से नियत कर लें, अल्लाह सुनने के लिए नहीं मानने के लिए सुन रही हूं। ठीक है, हत्तुल वसा कोशिश। इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि मुख्तलिफ किस्म के आयतें आती हैं कुरान में माशाल्लाह, कुछ इबादत से मुतल्लिक हैं, कुछ मुलाद से, कुछ सदका खैरात से। जो बात सुने फौरन नियत कर लें कि इस पे अमल करूंगी, चाहे वो अमल टूटा फूटा ही सही, कच्चा पक्का खेलने वाला ही अमल हो, एक दिन के लिए कर लें करेंगी। मसलन सिंपल सबसे आसान मिसाल देनी लगती है, सदके की आयत है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की कोई आयत आती है तो क्या करें, उसी वक्त नियत करें 10 पैनी, एक क्वार्टर, यहाँ क्या बोलते हैं, क्वार्टर, एक क्वार्टर अल्लाह के रास्ते में डाल दूंगी, डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगी, सदके में दे दूंगी। खाना खिलाने की आता है, अच्छा मैं एक बंदे को अल्लाह आज इसलिए खाना, आज या कभी भी नियत कर ले, कर चाहे एक दो दिन बाद भी ले, कि अल्लाह ये खाना मैंने इस आयत पे अमल की नियत से किया। क्यों, कि जब पहली दफा कुरान पढ़ते हुए अमल करेंगे ना, अमल की नियत करेंगे, तो फिर आदत पड़ जाएगी अमल करने की। ठीक है, फिर इसी तरह कुछ और चीज़ें आएंगी जिसमें माली मामलात भड़के कारोबारी मामलात पे जाते हैं, बाद जब हमारे अपने गेटअप की बातें आएंगी, खेल खेल में सही आज इस पे अमल करूंगी। आपको याद है बच्चियां बचपन में खेलती थी किससे खेलती थी, बच्चियां माओ के दुपट्टों से, इतना शौक होता है, और माओ से डांट खाती थी, वो कहती थी देखो मेरे दुपट्टे को घुंघी लग गई, सुराख हो गया, वो खेल खेल के। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले दौर में लोग बुरके के नाम पे ऊपर का बुरका अलग पहनते थे, नीचे का, जैसे आज भी उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो गई है स्काफ की सूरत में। तो माएं दोपहरों को सो जाती थी तो बच्चियां माओ के दुपट्टे और इस तरह के इससे खेल खोल के कभी निकाब करती थी, कभी कुछ करती थी। पिछले साल इत्तफाक की वजह से हमारी एक स्टूडेंट है तो उनकी नवासी किसी अरब मुल्क रहती है तो वहां से आई हुई थी, बहुत ही प्यारी बच्ची और लविंग और बहुत पोलाइट है। तो तरावी पे हम जाने लगे तो वो भी साथ आई, तो मैं जब गाड़ी में आई तो मैंने कहा ये तो वो बैठी हुई है और साथ जो भी है, ये कौन है निकाब में, कैन यू बिलीव, मेरे पास तस्वीर है उसकी, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, इतनी प्यारी गुगली बुगली बच्ची मुंह पे निकाब पहन के बैठी हुई। नानी ये क्या हुआ, कहती है जिद करनी शुरू कर दी जब हम आ रहे थे, तो जब नानी ने पहनना होगा अपना तो कहती मुझे भी पहनना, फिर नानी ने नीचे फ्रॉक पहना हुआ सब कुछ, और इतनी प्यारी कि मैं कहूँ तो मुबालगा हो जाएगा। देखिए ये तो जिंदगी का सफर है ना, ये जिंदगी का सफर है। आप अगर इस किताब को अपना पैशन बना लेंगे और आप इसी खेलें, इसी से बातें करें, इसी से प्यार करें, आपको और किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको अपनी दोस्त प्यारी लगती है और उसका दुख सुख उसके आते याद आ जाती है ना, समझ आती है, जिसका कुरान के सब वक्त गुजरेगा उसको, आपको मेरे से भी अच्छे जेम्स मिलेंगे इसमें से। तो बहरहाल अमल की नियत करनी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद देखिए पांचवी जो चीज़ है, जो पांच का कुरान पाक का अगला हक है, तबलीग और तबहीन, यानी कन्वेइंग एंड क्लेरिफाइंग। क्लेरिफाइंग, हमने इसके पैगाम को आम करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा हम गोल दिया करते हैं, अभी दे देती हूँ, रोज देने का इतना वक्त हुआ ना हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वो क्या है कि आपने जो रोज सुना होगा इधर, अब यहाँ तो इंशाल्लाह ताला हम 2.5 आवर के अंदर करेंगे साथ तिलावत करके, यानी टोटल टाइम। देखिए ये आज से वादा करें, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको खजाना लेना है पूरा, तो 10:15 पे आप इधर हो। आप 10:30 गोल बनाएंगे ना, तो शुरू के 15 मिनट सिर्फ सेटिंग्स में जहनी तौर पर आपकी ये वो खोलना बंद करना, ये मुझे भी तकलीफ देगा आपको भी देगा। 10:15 पे आप उन नमाजियों की तरह जो इमाम की हय्या अला सलाह की आवाज के लिए मुंतजर आप इस हॉल में बैठे हो, मैं भी आके बैठी हूँ, ना मिले ना सलाम रहे, हर चीज का एक वक्त होगा। अब मैं आप सबसे अगर मिलने लग जाऊंगी तो कितना मिनट लग जाएंगे ना, तो आप आके यहाँ बैठे और गौर व फिक्र करें। बल्कि मैं चाहूंगी सिस्टर फायजा आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि 10:15 से जो हमारे टाइम से अनाउंस पहला 15 मिनट, आप इधर पिछले पारे का रिकैप शुरू करा दीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए एक सोने पे सुहागा होगा। कल का जो आज जो हम करेंगे ना, तो कल यहाँ ये 10:15 से शुरू कर देंगी, ताकि 10:30 पे बस बिस्मिल्लाह करके ऐसा यकूल उस सुफहाओ मिनन्नास, ठीक है? इसके अंदर ये होगा कि जब आप यहाँ सुनेंगे तो आप उस पूरे सुने हुए को अपनी सहूलत रख लें, हम उसके ऊपर आपको गाइड भी कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपने अपने घर में जाके कम अज कम किसी एक दोस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है घर वालों का हक ज्यादा होता है, आके अपने बच्चों से बात कर लें, फैमिली में हस्बैंड उनसे कर लें, सास है, नंद है, बहन है, भाई, जिस तरह का आपका स्टेटस है, कि मुझे इजाजत दें कि डेली 15 मिनट आकर मैं आपको कुछ बताऊं। और बिल्कुल हल्के फुल्के लफ्जों में आपने अपनी बातों को जो सीखी होंगी वो शेयर करना है। कोई घर में नहीं है, पास नहीं है, तो फोन पे कर लें, फेसबुक पे कर लें। अगर आप अपना, ये मैंने लिस्ट एक बताया है जो यहाँ सीखते हैं, बल्कि आप में से कितने साथी जो फेसबुक यूज करते हैं, सॉरी मैंने गलत सवाल कर दिया, जो नहीं करते वो हाथ खड़ा कर लें तो उसमें मेरा ही एक हाथ है, एक औरत, दो तीन है जी, जो करते हैं ना आप सब, 15 मिनट तक अपने अपने फेसबुक के पेजेस या जो भी आपके ब्लॉग्स हैं उस पे रोज के पारे की के पॉइंट्स लिखिए। देखिए जब हम दूसरों को कहते हैं आओ आओ, तो वो कहते हैं पता नहीं इनका कोई लालच है, थ्रेट फील करते हैं। आप क्या करें, उनसे अपनी खुशी शेयर करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस तरह जब हम इस किताब से जुड़ेंगे, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, अगर मुसलमान इस तरह के मुसलमान बन जाएं कि कुरान के ये पांच हक अदा करने की नीयत से कुरान सीख के इस पे चल पड़े, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये दुनिया दोबारा वही रंग पेश करेगी जो खिलाफत राशिदा में था और जो पिछली सदियों में हमने देखा। हम अल्लाह ताला से बहुत दुआ करेंगे कि हमारे लिए खैर का मामला करें। अब यहाँ पे आपको तो नहीं याद होगा, मुझे याद है कि ये सारी बातें मैंने न्यू फर्स्ट टाइम सुनने वालों के लिए की, और ऑफ कोर्स इसमें दोबारा सुनने वालों के लिए भी था। चलती हूँ आगे दूसरी तरफ। अब हमारे जो सुनने वालों की दूसरी किस्म है, ये वो है जो बहुत सालों से सुन रहे हैं, कई जगह से सुना, कईयों से सुना, कुरान भी पढ़ा, तौरे कुरान किया, और उन्होंने सबीलुल जन्ना भी किया, आप नूरुल्ला नूर करके उसके अगले मरहलों में भी हैं, यानी बहुत पढ़ चुके, माशाल्लाह मास्टर्स हैं या डिग्री होल्डर हैं, वो इस दौरे कुरान को क्या लें, सारी मालूमात पीछे करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो कुछ अभी तक आप सुन चुके हैं कुरान के नाते से, उस सब को बंद करके एक साइड पे करते हैं, और इस दफा आप इस दौरे कुरान को अपने दिल पे लें, क्योंकि हम बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ में जब दब जाते ना, तो फिर हम सही तरह से काम नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल उम्मते मुस्लिमा का एक फर्द बन के सुनना है। जब मैं पढ़ाऊं और आप कहेंगे अच्छा ये वाक्य भी सुनाएं, अच्छा ये तफसीर में बनाया था, और इस आयत की तो 1 घंटा तफसीर हुई थी, और इसकी तो 2 घंटा हुई थी, इन सब इंफॉर्मेशन को बंद कर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले हमारे साथ दूसरे कोर्सेज किए हैं, वो दौरे कुरान के दौरान अपने नोट्स कतन न खोलें। आप कहेंगे ये आप बात क्यों कर रही हैं, मैं इसलिए कह रही हूं कि बार दफा इल्म का भी गुरूर होने लगता है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अच्छा इस साल ये बताया था, अगले साल वो बताया था, ये किया था, वो किया था, बल्कि एक नया कुरान शुरू करें। पहले जिस कुरान से सीखा हुआ उसको ना खोले। आपके तो नहीं होंगे जो भी ले रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहले तारे कुरान किए हुए हैं या कुछ और पढ़ा है, वो किचमिच वाली जो कुरान वर्ग, वो जो एक डायरी बन चुकी है ना उनका कुरान, उसको छोड़ के और ना कुछ आए। बल्कि मैं अगर माजरत करूं, जहां भी हमारे नूरुल्ला नूर के स्टूडेंट्स हैं उनसे, तो आप इस दफा बिल्कुल सादा कुरान सामने खोल के सुने जिसमें तर्जुमा भी ना हो। और मेरा अपना दिल कर रहा है खुलासा कुरान वाला स्टाइल रखो। मैंने उसमें सिर्फ अरबी खोल के पढ़ा था, उर्दू में, अरबी से उर्दू में पढ़ा। अब आप लोग परेशान ना हो, मुझे आपकी नजरों से लग रहा है कि ये कुछ और ही बातें हो रही हैं, लेकिन ये उनके लिए दिल भी सादा, दिमाग भी सादा, कुरान भी सादा। और हर दिन इस सोच के साथ सुने, उम्मते मुस्लिमा का फर्द होने के नाते से मैंने क्या करना। दिल करता है कि इतना रकीक और इतना सॉफ्ट मैसेज हो इस साल का, और उसको दिल पे ले और खुद से वादा करें, बीच में जहां तिलावत सुनाएंगे आपने उठना नहीं अपनी जगह से, क्योंकि ये जो कुरान की बारिश बीच में आती है ना, ये हमारे दिल में खैर डालती है। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर आप पारा नहीं शुरू करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर सूरत फातिहा की तिलावत सुनते हैं, 3 मुख्तलिफ आवाज़ों में सुना दें, एंड पे हम बाद में शुरेम की सुनाएं, ठीक है। आप लोगों का अब सफ़र शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडलाइन दे दूँ। जब सफा पलटें तो ऐसे पलटें कि आपके साथ वाले को भी आवाज़ ना आए। ये उनकी महफिल का एक अदब भी है और इसकी ताज़ीम भी है। और दूसरी बात यह है कि कोई चीज़ अगर आपको भी नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं है, कुरान नहीं है इस वक्त किसी के पास, आप कह रहे अच्छा मैं स्टॉल से ले आऊँ, आप कह रहे मेरे पास नोट पैड नहीं, डोंट वरी। अगर आप में से किसी को लिखने के लिए नोट्स चाहिए तो हाथ खड़ा करें, अभी एडमिन आपको यहीं दे देते हैं पेपर पेन, दैट्स इट। सूरह फातिहा सबको आती है, अभी हम सूरह फातिहा करने लगे हैं, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे, तिलावत सुनाऊंगी आपको। इस तिलावत को इस सोच से सुनिए कि रोज पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर हम बाद में दोबारा सुनेंगे। चलिए आइए सुनते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.